दिन भर तारीख 9 अप्रैल दिन सोमवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। दलितों के खिलाफ हिंसा के विरोध में कांग्रेस का देशव्यापी उपवास, राहुल गांधी बोले,
बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हम यहाँ खड़े हैं और इनको हम 2019 में हरा के दिखाएंगे। मोदी जी के दिल में दलितों के लिए कोई जगह नहीं है, वो पूरा देश जानता है।
लेकिन बीजेपी ने उठाए उपवास की मंशा पर सवाल।
राहुल जी, यह उपवास और ये छोले भटूरे, ये सत्ता की भूख का खेल है।
रूस का दावा, सीरिया के डूमा में रासायनिक हमले के नहीं मिले निशान, निगरानी संस्था कर रही है जांच, जारी है निंदा का दौर।
Diesen erneuten Giftgaseinsatz verurteilt die Bundesregierung auf das Allerschärfste.
और कॉमनवेल्थ खेलों में शूटर जीतू राय, टेबल टेनिस और बैडमिंटन मिक्स टीम ने भारत को दिलाया गोल्ड। होगी आपकी राय भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कुलदीप मिश्र से। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को दलित विरोधी बताते हुए आज राष्ट्रव्यापी उपवास किया। दिल्ली के राजघाट पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी उपवास पर बैठे और इन प्रदर्शनों की अगुवाई की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता के लालच में ये प्रदर्शन कर रही है। एक दिन पहले उन्नाव के भाजपा विधायक पर बलात्कार का आरोप लगाने और मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्महत्या की कोशिश करने वाली लड़की के पिता की सोमवार सुबह उन्नाव के जिला जेल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन लापरवाही के चलते संबंधित माखी थानाध्यक्ष समेत 5 अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है।
कोई भी हो, पहले इस बारे में कह दिया गया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार और कानून जो भी इस मामले में दोषी हो या किसी भी घटना में, उसके साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं करेगी।
ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शब्द। रूस ने इसराइल पर सीरिया के एक सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमले करने का आरोप लगाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसराइल के 2 लड़ाकू विमानों ने बीती रात सीरियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना T-4 वायुसेना अड्डे पर हमले किए। इसराइल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक सीरियाई निगरानी समूह का कहना है कि इन हमलों में 14 लोगों की मौत हो गई, जिसमें सीरियाई सेना और ईरानी सेना के अधिकारी भी शामिल हैं। यूरोप स्थित संस्था द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉरपोरेशन ने कहा है कि हंगरी में संपन्न हुए चुनावों के दौरान विपक्षी दलों को सत्ताधारी फिडेश पार्टी के साथ बराबरी का मुकाबला करने का मौका नहीं मिला। सत्ताधारी पार्टी ने तीखे शरणार्थी विरोधी अभियान के बाद 2/3 सीटें जीती हैं, जो संविधान में बदलाव करने के लिए पर्याप्त हैं। प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन का यह सत्ता में लगातार 3रा कार्यकाल होगा। संस्था के चुनावी निगरानी अभियान के प्रमुख डगलस वेक ने आरोप लगाया कि हंगरी सरकार ने चुनाव के दौरान सरकार और दल के बीच का फर्क मिटा दिया। उन्होंने कहा, आठ अप्रैल को संपन्न हुए संसदीय चुनाव में सरकार और सत्ताधारी पार्टी के संसाधन बड़े स्तर पर परस्पर एक होकर काम करते हुए दिखे, जिससे उम्मीदवारों को बराबरी का मुकाबला करने का मौका नहीं मिला। मतदाताओं के विचार भिन्न भिन्न हैं, लेकिन दूसरे देश से आए लोगों के खिलाफ नफरत, पक्षपातपूर्ण मीडिया और अपारदर्शी वित्त अभियान ने असल राजनीतिक बहस की गुंजाइश को संकीर्ण कर दिया और पूरी जानकारी के साथ मतदाताओं के वोट करने के आसार कम कर दिए। ये थे द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉरपोरेशन के चुनाव निगरानी अभियान के प्रमुख डगलस वेक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका की ओर से लगाई गई ताज़ा पाबंदियों के बाद रूस के आर्थिक बाजार तेजी से गिरे हैं। मॉस्को के 2 बड़े शेयर धारक 10% से ज़्यादा नीचे आए हैं। एल्यूमिनियम कंपनी रूसल सबसे ज़्यादा प्रभावितों में से है, जिसने अपना 50% से ज़्यादा मूल्य खो दिया है। संवाददाताओं का कहना है कि उसके सामने अपने कुछ कर्ज न चुका पाने का खतरा भी मंडरा रहा है। अमरीका की ये पाबंदियाँ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी कहे जाने वाले अधिकारियों और व्यापारियों पर कार्रवाई के बड़े अभियान का हिस्सा हैं। रासायनिक हथियारों से जुड़े मसलों पर निगरानी रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने कहा है कि वह सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले शहर दूमा में हुए कथित रासायनिक हमले के संबंध में पूरी जानकारी जुटा रही है। इस संदिग्ध हमले पर आज संयुक्त राष्ट्र में भी चर्चा होनी है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि रूसी सैन्य विशेषज्ञों ने घटनास्थल का दौरा किया और पाया कि वहां कोई रासायनिक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की सुनहरी चमक बरकरार है। आज निशानेबाज जीतू राय ने सोने के तमगे पर निशाना लगाया तो टेबल टेनिस टीम और बैडमिंटन की मिक्स टीम ने भी भारत की झोली में गोल्ड डाला। भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर हम आगे बात करेंगे, सुनवाएंगे उस गवाह की जुबानी, काले हिरण के शिकार के उस मामले का घटनाक्रम जिसमें अभिनेता सलमान खान को सजा हुई है। लेकिन दिन भर की शुरुआत करेंगे उस मुद्दे से जिस पर राजनीति गर्म है और हर पार्टी गंभीर चर्चा की जरूरत बता रही है। मुद्दा है दलितों के खिलाफ हुई हालिया हिंसा का। कांग्रेस ने आज इस मुद्दे पर एक दिन के देशव्यापी उपवास का आयोजन किया। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी नेता राजघाट पर उपवास के लिए बैठे, लेकिन ये आयोजन एक के बाद एक कई विवाद में घिरता गया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन कई सवाल कांग्रेस से भी पूछे जा रहे हैं। सुनिए मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में आज पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के राजघाट पर एक दिन का उपवास किया। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के कारण उन्होंने ये उपवास किया है। उपवास के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया और उन्हें दलित विरोधी बताया।
बीजेपी की विचारधारा देश को बांटने की है, दलितों को कुचलने की है, आदिवासियों को कुचलने की है, माइनॉरिटीज को कुचलने की है, तो उसके खिलाफ, बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हम यहाँ खड़े हैं। और हम आज नहीं खड़े हैं, हम पूरी जिंदगी भर खड़े रहेंगे और इनको हम 2019 में हरा के दिखाएंगे। बीजेपी के दलित एमपी मोदी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, पार्लियामेंट में आप उनसे बात करें, वो हमें भी बताते हैं कि मोदी जी राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, मोदी जी एंटी दलित व्यक्ति हैं, मोदी जी के दिल में दलितों के लिए कोई जगह नहीं है, वो पूरा देश जानता है, ये कोई सीक्रेट नहीं है।
राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होते ही उनके आरोपों का जवाब देने बीजेपी सामने आई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने उपवास को जनता के साथ मजाक कहा। उन्होंने कहा ये कांग्रेस की सत्ता पाने की भूख और राजनीति चमकाने का हथकंडा है।
जो लोग एक वक्त भूखे नहीं रह सकते हैं, जो सुबह उठकर उपवास तक करने नहीं आ सकते हैं, वो लोग एंटी दलित हैं, या जो दलितों को मुख्य धारा में लेकर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं वो एंटी दलित हैं। राहुल जी, यह उपवास और ये छोले भटूरे ये सत्ता के भूख का खेल है। यह केवल छोले भटूरे का भूख नहीं है, दिस इज द हंगर फॉर पावर, ये सत्ता का भूख है।
संबित पात्रा जो बार बार भटूरे खाने की बात कह रहे थे वो सामान्य नहीं थी। दरअसल कांग्रेस का उपवास जब दिन में शुरू हुआ तो इसके साथ कई विवाद भी जुड़ते चले गए। इसकी सबसे पहले शुरुआत दिन में 1984 सिख विरोधी दंगे के कारण चर्चा में रहे जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार से हुई। उपवास कार्यक्रम में पहुंचे इन नेताओं को कार्यक्रम का मंच छोड़कर जाना पड़ा। वहीं थोड़ी देर बाद उपवास से पहले की एक तस्वीर वायरल हो गई जिसमें कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ और नेता छोले भटूरे खाते हुए देखे गए, जिसे कई बीजेपी नेताओं ने ट्वीट किया। इस पर सफाई देते हुए अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि ये उपवास केवल सांकेतिक था।
ये सांकेतिक उपवास है, कोई इंडेफिनेट उपवास नहीं है। तो वो 8 बजे से पहले की फोटोग्राफ है और 10:30 से 4:30 का उपवास का समय। स्थिति यही है कि देश को संभालने की बजाय वो इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि हम किस समय खा रहे हैं और किस समय नहीं।
दलितों पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ किए गए कांग्रेस के इस देशव्यापी उपवास ने सुर्खियां तो बटोरी, लेकिन दूसरी वजहों से। मोहम्मद शाहिद, बीबीसी दिल्ली।
दलितों के संगठनों ने 2 अप्रैल को भारत बंद का आयोजन किया था। इस दौरान मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में भी हिंसा हुई थी। इसके विरोध में सामान्य और पिछड़ा जातियों के संगठनों ने कल बंद की अपील की है। इसे लेकर मध्य प्रदेश प्रशासन चौकन्ना हो गया है। भिंड और ग्वालियर समेत कई शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। बीबीसी संवाददाता प्रशांत चहल की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में बीते 2 अप्रैल को हुई हिंसा की आंच अभी पूरी तरह से ठंडी भी नहीं हुई है कि प्रशासन के माथे पर दोबारा बल पड़ने लगा है। वजह है कल यानी 10 अप्रैल को की गई एक और बंद की अपील। इस बार सवर्ण जातियों और पिछड़ा जातियों के कुछ संगठनों ने बंद की अपील की है। ग्वालियर में ब्राह्मणों के एक संगठन के अध्यक्ष राम नारायण मिश्रा बंद के मकसद को लेकर पूछे गए सवाल पर कहते हैं,
सब अपनी स्वेच्छा से कल ग्वालियर बंद रखेंगे। 2 तारीख को जो लोगों के साथ तोड़फोड़ की गई, गाड़ियां तोड़ी गई, जो उसके विरोध में उसमें उनका सबका सहयोग है। इसमें प्रमुख रूप से ब्राह्मण बनिए हैं, क्योंकि व्यापारी जो है वैश्य समाज है, उसका प्रतिष्ठान जनरली उनके हैं, उनका पूरी तरह से जो है मूक समर्थन है। क्षत्रियों का इसमें समर्थन, कोई राजनीतिक पार्टी शामिल नहीं है, कोई पुलिस से हमारी कोई बात नहीं हुई। हम भी कल जो है सड़क पर बंद कराने नहीं निकलेंगे, लोग अपने आप स्वेच्छा से बंद रखेंगे।
इस बंद की अपील करने वाले संगठनों का दावा है कि उनका विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन 2 अप्रैल के बंद के दौरान हुई हिंसा को लेकर आलोचना में घिरी मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन इस बार खुद को चौकन्ना बता रहे हैं। राजधानी भोपाल और ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आशीष ने बताया कि शहर में धारा 144 लागू है और 20,000 से ज्यादा हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। वहीं 2 अप्रैल के बंद के दौरान भिंड जिले में भी हिंसा हुई थी। वहां के कलेक्टर इलिया राजा कहते हैं,
कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 10 तारीख और इवन 14 तारीख को भी पूरी जिले भर में 144 जन लागू किए गए। सारे स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद रखेंगे। पूरी जिले में हम लोग सारे आर्म्स सस्पेंड किए हैं।
बंद का ऐलान कर रहे संगठनों को किसी राजनीतिक दल का समर्थन हासिल नहीं है। इसके मकसद और कामयाबी को लेकर भी कई सवाल उठे हैं। ग्वालियर के वरिष्ठ पत्रकार नवीन नायक ने बताया,
राजनीतिक दलों की बात करें तो इस बंद को किसी भी राजनीतिक दल ने सीधे रूप में इसका समर्थन नहीं दिया है। सर्वण है वो लोग कह रहे हैं कि दलितों की तरफ से ये पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, तो इसमें कोई एक कहना मुनासिब नहीं होगा कि किसी एक पक्ष के ही गिरफ्तार ज्यादा हुए हैं कम हुए हैं, लेकिन अभी तक आंकड़े शो नहीं किए हैं पुलिस विभाग ने।
मध्य प्रदेश में कल बुलाए गए बंद को जातियों के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। जमीनी स्थिति ये है कि ऐसे शक्ति प्रदर्शन प्रशासन ही नहीं बल्कि कई शहरों की शांति व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती की वजह बन गए हैं। प्रशांत चहल, BBC दिल्ली।
उधर मध्य प्रदेश में ही हाईकोर्ट ने प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार से 5 हिंदू संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने पर जवाब मांगा है। इन संतों को सरकार ने उस वक्त राज्य मंत्री का दर्जा दिया था जब वो सरकार की नर्मदा यात्रा में हुई कथित अनियमितता के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाले थे। सुनिए शुरय न्याजी की रिपोर्ट।
इंदौर के राम बहादुर नाम के व्यक्ति ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ याचिका लगाई थी कि सरकार ने जिन संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया वह सभी नर्मदा यात्रा को लेकर आंदोलन छेड़ने वाले थे, लेकिन वह अपना अभियान शुरू करते उससे पहले ही सरकार ने उन्हें राज्य मंत्री के दर्जे से नवाज दिया और उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया। इस मसले पर सोमवार को सुनवाई करते हुए खंडपीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीके जायसवाल और न्यायमूर्ति सुशील अवस्थी ने सरकार से 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। याचिका लगाने वाले राम बहादुर ने बताया,
हम चाहते हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है गलत फैसला है, ये तो सरकार के ब्लेमेंट हो रही है, ये भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले थे और अचानक वो राज्य में दर्जा दे दिया गया। कंप्यूटर बाबा ने 2016 में हुए थे, दौरान भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा। कंप्यूटर बाबा शब्दों की अगुवाई के नाम पर सरकार को ब्लेमेंट कर रहे हैं, हम चाहते हैं सरकार को पुनर्विचार करें।
इस मसले पर न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश भर में बहस छिड़ गई है कि क्या संतों को भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए। वहीं यह बात भी उठने लगी कि सरकार ने अपनी पोल न खुले इस वजह से इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। चुनाव के इस साल में विपक्षी कांग्रेस भी सरकार के निर्णय को पूरी तरह से गलत मान रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा,
अपने घोटाले छुपाने के लिए नर्मदा यात्रा के दौरान किए गए पापों को धोने के लिए मुख्यमंत्री जी ने संतों के नाम का दुरुपयोग किया है और सनातन परंपरा भी कहती है कि जो संत है वो तो सब मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है, संत है समाज के ऊपर की आवश्यकता नहीं है।
वहीं सरकार की तरफ से इस मसले पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक 3 हफ्ते में इस मामले में जवाब दे दिया जाएगा। पिछले हफ्ते सरकार ने एक आदेश निकालकर कंप्यूटर बाबा, भैयू महाराज, नर्मदानंद महाराज, हरि हरानंद महाराज और योगेंद्र महंत को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया था। ये बाबा अलग अलग पहचान रखते हैं। कंप्यूटर बाबा, जिनका असली नाम देवदास त्यागी है, वो हर वक्त लैपटॉप लेकर चलते हैं। वे शिवराज सरकार पर कई बार निशाना साध चुके हैं, लेकिन राज्य मंत्री का दर्जा मिलते ही शिवराज सिंह उनके लिए एक भले व्यक्ति बन गए हैं। योगेंद्र महंत विश्व ब्राह्मण समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनकी राजनीति में अच्छी खासी दिलचस्पी है। इनका दावा है कि वो धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में बरसों से काम कर रहे हैं। भैयू महाराज, जिनका असली नाम उदय सिंह देशमुख है, विश्वजालपुर के जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पहले इन्होंने मॉडलिंग भी की है। स्वामी हरिहरानंद जी का आश्रम अमरकंटक में है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर के आसपास के क्षेत्र में हरिहरानंद की अच्छी पकड़ है। विंध्याचल में सरकार के खिलाफ कई आंदोलन भी इन्होंने किए हैं। स्वामी नर्मदानंद डिंडोरी से आते हैं जहां पर इनका आश्रम है। मध्य प्रदेश के महाकौशल में नर्मदा से सटे इलाकों में इनके समर्थकों की अच्छी खासी तादाद है। शुरहनिया, ZBBC न्यूज, भोपाल।
BBC हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
अगली खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक बस हादसा हुआ है। इसमें एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इनमें ज्यादातर बच्चे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मैंने अब से थोड़ी देर पहले स्थानीय पत्रकार अश्विनी शर्मा से बात की।
देखिए, ये बहुत एक हिमाचल प्रदेश में बहुत गंभीर घटना हुई है जिसमें स्कूली बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 से 12 साल की बताई जा रही है और ये बस जो है एक प्राइवेट बस है, स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चों को लेके अब उनके घरों में छोड़ने जा रही थी। ये आज 3 बजे के बाद का हादसा है। इसमें अभी तक जो हमारे पास सूचना है, जो वहां के स्थानीय विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के राकेश पठानिया, उनसे मेरी बात हुई है, वो अभी हॉस्पिटल में मौजूद हैं नूरपुर में, जिसके करीब कोई 10-15 किलोमीटर का हादसा है उसके रेंज में, और उनका कहना कि 18 जो शव हैं उनको प्राप्त हो चुके हैं। बाकी अभी जो स्थान है जो जहां पे घटना हुई है वहां से लाया जा रहा है हॉस्पिटल में। कुछ जो इंजर्ड हैं उनको कांगड़ा के एक टांडा नाम स्थान पे हॉस्पिटल है, वहां ले जाया गया है।
ये थे अश्विनी शर्मा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में काले हिरणों के शिकार के जिस मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को 5 साल की सजा हुई है, उसमें कुल 5 सरकारी गवाह पेश हुए। इनमें से एक हैं सागर राम विश्नोई। वो राजस्थान वन सेवा के वन्य जीव विभाग में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे और बीते महीने ही रिटायर हुए हैं। नौकरी में रहने के दौरान सागर राम ने मीडिया से दूरी बनाए रखी, लेकिन अब उन्होंने BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव के साथ खास इंटरव्यू मैं उस वक्त के पूरे वाकये को बयान किया है।
आपको तो पूरा, क्योंकि आप सरकारी गवाह भी हैं और आप तो महकमे से हैं, आप तो SI, तो कुछ बताइए कि ये किस तारीख की बात है, पूरा कुछ बताइए क्या हुआ था कैसे?
ये 1 और 2 तारीख रात का मामला है, अक्टूबर का 1998 होगा, 1 और 2 मध्य रात्रि में ये वाका हुआ है। कांकड़ में तो हमारे बीच तो डाणिया पास में ये वाका हुआ है। वाका हुआ है रात को ये गांव वाले उनके पीछे बगे, वो छोड़ के बगे यहाँ से। सवेरे हमारे चौकी पर आए थे सोगर राम पुनसन एयरपोर्ट लेकर कि भाई ऐसा वाका हमारे डाणिया के पास हो गया है। तो मैं भी हमारे इंसार थे बहुनलाल विष्णु, उनके साथ गया मौके पर, और मौका वारदात देखने के बाद में उन लोगों ने बताया भाई सलमान खान का मामला है। सलमान खान यहाँ लोनी होटल में ये इनकी एक्सरसाइज चल रही थी फिल्म बनाने की, तो ये करीबन 15-20 दिन यहाँ आता था। हर आदमी की इनकी पहचान होगी और गाड़ी के नंबर भी इन्होंने रिकमेंड कर लिए कि ये नंबर गाड़ी है। और बाद में उनको देखकर हमें उन विष्णु को लेकर हम गए ऑफिस में, DO साहब इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई और वहाँ से डॉक्टर नेपालिया के घर गए, उस दिन छुट्टी थी, नेपालिया को लेकर मौके पर आए, पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम करने के बाद में टोटल काम कंप्लीट होने के बाद में हम लोग वापस जोधपुर चले गए और नेपाली ने बोलिया कि भाई हम आपको इसकी रिपोर्ट 1-2 दिन दे देंगे। 1-2 दिन उसने दी नहीं, उसने आखिरी में रिपोर्ट ये बिगाड़ दी पूरी। तो इसके ऊपर हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारे डायरेक्टर साहब ने, हमारे कलेक्टर साहब ने वापस बोर्ड गठित किया और बोर्ड द्वारा ही वापस इसका मेडिकल किया गया। तो हमारे हमने उन्होंने ऐस कर लिया 3 तारीख मंडोर गार्डन से हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिस में लाकर उसको बैठाया और फिर इसको पूछताछ करी, फिर उनको लाकर ये जगह बताई कि तुमने ये अपराध किया है। एक रात हमारे चौकी में रोका था उसको।
जिस मुकदमे में इनको 5 साल की सजा हुई, कितने सरकारी गवाह हैं?
इसमें सरकारी गवाह एक तो बहुमला जी, वो भी रिटायरमेंट हो गए, इस चौकी इंचार्ज से गुड़ा गए, वो भी रिटायरमेंट हो, मैं भी रिटायरमेंट हो गया, और एक हमारे ACF साहब से उन्होंने ये डिपार्टमेंट छोड़ दिया, और एक DO था वो भी रिटायरमेंट हो गए।
कभी आपके ऊपर इस तरह की बात तो नहीं उठी कि भाई आप ASI भी थे, मतलब आप सरकारी इसमें भी थे, लेकिन आप बिश्नोई थे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने समाज का ज्यादा साथ दिया, ऐसा तो नहीं?
वो तो अपोजिट हो गए थे, मैं हमेशा ही बोलता था कि ये बिश्नोई जाति का ऐसा, ये तो इन्हें इनको पता है, ये तो सांसद का हर टाइम इनका यही बयान था कि सब गवाह बिश्नोई है, सब सरकारी गवाह बिश्नोई है, तो दूसरा कौन आता है? ऐसे मतलब से मैंने बात करी 2 बार कि सरकारी गवाह हम दोनों बिजनेस थे और प्राइवेट भी बिजनेस थे, तो इन्होंने ये पर्सनल बैंड बनाया था कोर्ट में, तो मूसा किसको लाए? तो जो लोग कह रहे हैं कि मुगना इनको फंसाया गया, फंसाया गया नहीं है, हकीकत में ये मुगना है, इसमें फंसाया गया नहीं है, लोग कह रहे हैं बेचारा को फंसाया गया, बेचारा नहीं है, इसने हकीकत स्वीकार किया है इस जगह पर।
ये थे सागर राम विश्नोई और उनसे बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। और अब वक्त है आपकी राय का।
आपकी राय। नमस्कार, राजेश प्रियदर्शी की ओर से और स्टूडियो में आज मेरे साथ हैं
सरोज सिंह।
तो शुरू करें चिट्ठियों का सिलसिला।
सबसे पहले आज मैं ईमेल से शुरू करूंगी, क्योंकि इससे पहले मैं जब भी आती थी मैं हमेशा पोस्ट कार्ड से शुरू करती थी, लेकिन आज ईमेल वालों को तरजीह दी जाएगी। सबसे पहला ईमेल आया है गौतम दत्ता का, किशनगंज से। वो लिखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारोत्तोलन में भारत का जलवा और अन्य खेलों का विवरण रेहान सर से सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा भी आ रहा है। वसतुल्ला खान साहब का जो ब्लॉग है काले हिरन और सलमान खान को लेकर, उसमें जो व्यंग्यात्मक टिप्पणी है वो उन्हें बहुत ही मजेदार लगी।
बहुत शुक्रिया आपका। देखिए कि जिन लड़कियों को बोझ समझा जाता है समाज के कई हिस्सों में, एक बार फिर वो लड़कियां दिखा रही हैं कि उनमें कितना दम है और वो कितना वजन उठाकर देश के लिए गोल्ड मेडल जीत रही हैं। और रेहान फजल जाहिर है कि जिस जीवंत तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं, जिस तरीके से वो हाल बताते हैं, उसमें मजा तो आता है। और वसत तो खैर वसत ही हैं।
अगला जो ईमेल है वो राजीव कुमार उपाध्याय जी का है, अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, उनका एक सुझाव है, वो चाहते हैं कि बीबीसी का जन्मदिन जब भी है वो चाहते हैं कि पुराने जितने भी लोग बीबीसी के प्रसारण से जुड़े रहे हैं उन सब की आवाज बीबीसी पर सुनाई दे।
मेरे ख्याल से ये हमारे बहुत पुराने श्रोता होंगे और ये सुन चुके होंगे बहुत सारे लोगों की आवाज़ें। मेरा भी मन करता है कई बार पुराने लोगों की आवाज़ें सुनने का रेडियो पर, और मेरे ख्याल से हमारे पास आर्काइव में ऐसी बहुत सारी आवाज़ें हैं, और किसी मुनासिब मौके पर जैसे कि बीबीसी का जन्मदिन हम सोच सकते हैं ऐसा कुछ करने का। असली बात यही है कि आवाज़ ही वो चीज़ है जो हमेशा के लिए याद रह जाती है। तो आप बल्कि हमें और बताएं कि और आप किन किन लोगों की आवाज़ सुनना चाहेंगे। यही वजह थी कि हमने पिछले दिनों वर्ल्ड रेडियो डे के कार्यक्रम में अपने पुराने प्रसारक परवेज़ आलम साहब को जानबूझकर इसीलिए बुलाया था, और उसके बाद जो लोगों की चिट्ठियाँ आई उससे हमें समझ में आया कि लोग वो पुरानी आवाज़ें सुनना चाहते हैं, उससे उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं।
शायद मेरी आवाज़ ही पहचान है, इसलिए कहा भी जाता है, क्योंकि आवाज़ से लोग आप बहुत रिलेट कर पाते हैं बीबीसी को। अगला जो खत है वो मैं लूंगी,
पोस्ट कार्ड है।
ये लिखा है कैलाशनाथ मिश्र ने और सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से ये लिख रहे हैं, हमसे पूछिएगा, इन्हें चाहिए कि ये जल्द से जल्द वापस शुरू हो, ऐसा ये लिख रहे हैं।
हमसे पूछिए बीबीसी हिंदी का एक पुराना और लोकप्रिय कार्यक्रम था जिसको बहुत सारे लोग सुनते थे, उसमें बहुत सारी चिट्ठियां आती थीं। एक समय के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ, विवेचना या दुनिया जहान या जो ऐसे जो दूसरे कार्यक्रम हमने शुरू किए, हमें लगा कि जो हमसे पूछिए कार्यक्रम है उसकी उपयोगिता बहुत सीमित रह गई है। वो वाकई बहुत अच्छा कार्यक्रम था, लेकिन आज पत्र पत्रिकाओं, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल ज़माने में जब गूगल आपको सब कुछ बता सकता है, तो हमसे पूछिए जैसे कार्यक्रम में हमें बार बार वही सवाल आने लगे थे कि बरमूडा ट्रायंगल क्या है और पीसा की झुकी हुई मीनार के बारे में बताइए, तो हमें लगा कि हमें शायद अब समय आ गया है कि कुछ नया करना चाहिए। लेकिन हमसे पूछिए एक पुराना कार्यक्रम था, और पुराना कार्यक्रम जब तक आप बंद नहीं करेंगे नया कैसे शुरू करेंगे।
एक और हमारे श्रोता हैं मनोज शर्मा, उन्होंने गुजरात से लिखा है, आज के दिन भर कार्यक्रम में एक ऑडियो क्लिप दो बार प्रस्तुत की गई और उसके बाद क्षमा याचना भी नहीं की गई, ऐसा क्यों?
ये एक विशुद्ध मानवीय भूल है और इसके लिए हमें आपसे क्षमा जरूर मांगनी चाहिए थी, तब नहीं मांगी गई, शायद उनको पता न चला हो या वक्त न रहा हो या जो भी वजह हो, लेकिन ये गलती है और गलती के लिए हम हमेशा आपके क्षमा प्रार्थी हैं।
चिट्ठियों में रेहान फजल साहब के लिए चिट्ठी ना, ऐसा तो हो नहीं सकता, और बीते दिन उनका जन्मदिन भी था तो उनकी शुभकामनाओं के लिए भी बहुत सारे पत्र और मेल्स हमारे पास आए हैं, और उसमें लिखा गया है कि रेहान साहब को जन्मदिन की हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं कहिएगा, गोल्ड कोस्ट से बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
देखिए वो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जन्मदिन के दिन अपने परिवार के साथ अपने घर पे नहीं है लेकिन रिपोर्टिंग के लिए गए हैं, उनके साथ जो सहयोगी गए हैं तकनीकी सहयोग के लिए देवाशीष, रेहान फजल का जन्मदिन और देवाशीष नीतीश की पत्नी का जन्मदिन, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन था। और ये संयोग की बात है कि रेहान साहब भी अपने घर से दूर हैं और देवाशीष भी अपनी पत्नी का जन्मदिन नहीं मना पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपको आप तक गोल्ड कोस्ट की सारी खबरें पहुंचाई जा सकें। आपने जो अपनी बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं हम उन तक जरूर पहुंचा देंगे। मेरे ख्याल से अब वक्त हो गया है श्रोताओं से विदा लेने का। आपकी राय में आज इतना ही। अगर आप हमें पत्र लिखना चाहें डाक से तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
और अब बात ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में चल रहे कॉमनवेल्थ खेलों की। आज भारत ने 3 स्वर्ण पदक हासिल किए और अपने स्वर्ण पदकों की संख्या 10 तक पहुंचा दी। गोल्ड कोस्ट में मौजूद बीबीसी संवाददाता रेहान फजल भारतीय खिलाड़ियों की कामयाबी के गवाह बने। मैंने अब से कुछ देर पहले उनसे बात की और भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में पूछा।
देखिए साहब, बैडमिंटन में तो कमाल कर दिया भारत ने, 3-1 से मलेशिया को हराया है और स्वर्ण पदक जीता। पहला मैच जो था वो मिक्स डबल का था, सात्विक रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा थे भारत की तरफ से, और ये कमजोर कड़ी थी भारत की क्योंकि मिक्स डबल्स में बहुत ज्यादा नहीं जाना जाता। लेकिन 3 गेम्स में इन दोनों ने भारत को जीत दिलाई। सात्विक बहुत अच्छा खेल रहे थे, तगड़े स्मैशेस लगा रहे थे। अश्विनी पोनप्पा, उनको सलाह पे सलाह दिए जा रही थी, शायद इतनी सलाह उनके कोच ने भी नहीं दी होगी जितनी अश्विनी पोनप्पा ने उन्हें दी। बहरहाल ये मैच जीता। फिर उसके बाद श्रीकांत ने सिंगल्स मैच जीता सीधे गेम्स में 21-17 से। तीसरा जो गेम था उसमें मलेशिया ने वापसी की और डबल्स में उन्होंने भारत को हरा दिया। चौथे में फिर साइना नेहवाल उतरी और पहला गेम जिस आसानी से जीती, हमें तो लगा कि खेल खत्म होने वाला है, लेकिन दूसरे गेम में मलेशियन खिलाड़ी सोनिया चिया ने वापसी की और बराबरी कर ली। लेकिन तीसरे गेम में वो सानिया के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकी और इस तरह से भारत ने 3-1 से जीत दर्ज की। मैच के तुरंत बाद साइना नेहवाल ने हमसे बात की।
आई थिंक ये तो हिस्ट्री हो गया है। आई थिंक टीम इवेंट में कभी हमने गोल्ड नहीं जीता है और आज हम गोल्ड मेडल के साथ हैं। डेफिनेटली बहुत ही प्रेशर था मुझ पर। एक्चुअली इतना कभी टेंशन लेके खेली नहीं थी, बट जो टीम के लिए टेंशन होता है और मेरा मैच बहुत क्रुशियल भी था।
रेहान साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे जो गोल्डन शूटर है जीतू राय, उनके प्रदर्शन के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
देखिए, जीतू राय ने स्वर्ण पदक जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में। क्वालिफाइंग मुकाबलों में वो चौथे नंबर पर चल रहे थे, बल्कि उनके साथ जो थे ओम प्रकाश मिथरवाल जो दूसरे भारतीय शूटर थे उनका पहला स्थान था। लेकिन जब फाइनल हुआ वहां पर एक्सपीरियंस की परीक्षा होती है, नर्व्स की परीक्षा होती है, जीतू राय उसमें पूरी तरह से खरे उतरे और आखिर में 2-3 उन्होंने बंगल किए, लेकिन अंततः जीत पाने में सफल रहे। गोल्ड उनको मिला और कांस्य ओम मिथरवाल को मिला। जीत के बाद हमने जीतू राय से बात की।
क्वालिफाई जो स्कोर था इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मेरा विश्वास था कि मैं फाइनल में मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मैंने काफ़ी अच्छा, मैंने कई मेडल ले रखा था, मुझे कोई डर नहीं था, मुझे आज भी आराम से मैंने।
लेकिन दूसरा जो इवेंट था 10 मीटर एयर राइफल का, उसमें भारत की मेहुली घोष को रजत पदक मिला और अपूर्वी चंडेला को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। एक स्टेज पर ये दोनों आगे चल रहे थे लेकिन फिर पिछड़ गए। मेहुली घोष का बहुत ही कड़ा मुकाबला हुआ सिंगापुर की शूटर से और दोनों अंतिम जो शूट हुआ है उसमें बराबर थी, फिर शूट आउट हुआ जिसे टाई ब्रेकर कहा जाए और उसमें मेहुली पिछड़ गई और इस तरह से रजत पदक पर संतोष करना पड़ा। और बिल्कुल रात होते होते भारत ने एक और स्वर्ण पदक जीता टेबल टेनिस में, नाइजीरिया को 3-0 से हराकर। तो इस तरह से भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या यहां गोल्ड कोस्ट में हो गई है 10।
गोल्ड कोस्ट से जानकारी दे रहे थे रेहान फजल। और आपको बता दें कि आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला है और हैदराबाद ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर कुलदीप मिश्र से।
बीबीसी समाचार। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को दलित विरोधी बताते हुए आज राष्ट्रव्यापी उपवास किया। दिल्ली के राजघाट पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी उपवास पर बैठे और इन प्रदर्शनों की अगुवाई की। एक दिन पहले उन्नाव के भाजपा विधायक पर बलात्कार का आरोप लगाने और मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्महत्या की कोशिश करने वाली लड़की के पिता की सोमवार सुबह उन्नाव के जिला जेल जिला जेल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। रूस ने इसराइल पर सीरिया के एक सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमले करने का आरोप लगाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसराइल के दो लड़ाकू विमानों ने बीती रात सीरियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना T4 वायुसेना अड्डे पर हमले किए। यूरोप स्थित संस्था द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉरपोरेशन ने कहा है कि हंगरी में संपन्न हुए चुनावों के दौरान विपक्षी दलों को सत्ताधारी पार्टी से बराबरी का मुकाबला करने का मौका नहीं मिला। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे तिलक राज भाटिया, फेसबुक प्रसारण में मदद की ब्रजेश मिश्र ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।